ओम शांति। हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई जी पहुंच चुके हैं। हम उनका इस मौन भट्टी में अपने पवित्र प्रकंपन के द्वारा एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी 1961 से इस ईश्वरीय पढ़ाई का लाभ ले रहे हैं। आप बी का स्टडी कर रहे थे तब आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका वो परम सौभाग्य है जब पिता श्री ब्रह्मा अव्यक्ति आरोहण के दिवस था, उस समय आपको बाबा ने स्वयं आसाम से 2 दिन पूर्व ही आपको यहाँ बुलाया था और आपने बाबा की उस संपूर्णता को, उस कर्मातीत स्थिति को बहुत नजदीक से निहारा, अनुभव किया। उनके साक्षात अनुभव आपके अंदर निहित हैं। आपने अपनी सेवा काल के अंतर्गत बिहार, आसाम, गुजरात और उत्तराखंड में अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने और अनेक निमित्त शिक्षिका, आध्यात्मिक शिक्षिकाएं, टीचर्स के भी आप निमित्त बने। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के जो विभिन्न विंग्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर, उनका ऑफिस कोऑर्डिनेट करते हैं। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने पर्यावरण क्षेत्र में अनेक कार्य किए जिसके कारण मानसिक प्रदूषण आपका विशेष विषय रहा। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी आपने खोज की जिसके परिणाम स्वरूप आपको राजस्थान सरकार ने पर्यावरण श्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। आप 1996 से अपनी लौकिक सेवाओं से निवृत्त होकर पूर्ण रीति से तीनों ही स्थानों पर अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी है उसमें आप मेंबर हैं और ब्रह्मा कुमारी की भी जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है उसमें भी आपका विशेष स्थान है। ऐसे सम्मानित अनुभव युक्त पवन पुत्र बाल ब्रह्मचारी कुमार जीवन से उत्प्रोत शक्तियां, गुण पिता परमात्मा की अपने अंदर समाये हुए आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम सभी ब्रह्मावत्स यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी बनकर अपना सर्वस्व यज्ञ में न्योछावर करें। उसकी सरलतम अनुभव युक्ति विधि युक्ति हम सबको मार्ग प्रदर्शित करें। आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी।
ओम शांति। एक बार हमारे साथ मिलके हम सब लोग बोलेंगे ओम शांति को। ओ शांति। जब हम इस रीति से ओम शांति कहते हैं तो हम सब कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? यज्ञ की स्थापना के दिनों में। वो शायद स्थापना के दिन तो हम में से यहाँ पर जितने बैठे हैं किसी ने भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो तो निमित्त हमारी दादियों ने ही देखे हैं 1936-37 के। लेकिन जैसा हम सब ने सुना है बाबा ओम ध्वनि करते थे और इस रीति से ओम ध्वनि करके सब लोग ओम ध्वनि करते थे और उसके साथ साथ काफी आत्माएं बस विदेही बन करके कोई ध्यान में चले जाते थे, कोई अनेक प्रकार के साक्षात करते थे साक्षात्कार। तो वो पार्ट तो हम में से किसी ने नहीं देखा। लेकिन कुछ पार्ट जो बाबा के हम लोग हमने देखे हैं और जो आज के विषय से संबंध रखते हैं, उन पर हम लोग आपस में कुछ चर्चा करें, क्योंकि हम सबके सामने जो रोल मॉडल है, जो सबसे अधिक यज्ञ स्नेही नहीं यज्ञ रक्षक के रूप में आया, वो कौन है? अभी तक हम सबके सामने रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, और हम सबका भी लक्ष्य यही है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का। तो हम लोग यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक और साथ में और क्या, ये बनते हुए कैसे हम अपनी कर्मातीत विदेही अवस्था को प्राप्त करें, वो हम सबका विशेष लक्ष्य है। हमें याद आता है कि बाबा के सम्मुख जब हम लोग आते थे, मिलते थे, बस दूर से ही बाबा देखते थे और बाबा ऐसे बाहें फैला दे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बाबा की आंखों में ऐसी चमक होती थी और ऐसा मैग्नेटिक पुल होता था, चुंबकीय आकर्षण होता था, एकदम खींच करके हम सब लोग चले आते थे बाबा की बाहों में। केवल इतना ही नहीं, लेकिन विशेषता क्या होती थी, जैसे ही बाबा की दृष्टि मिली, बाबा का स्पर्श मिला, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। और कुछ समय ऐसा अनुभव होता था और फिर बाबा ऐसे थपथपा के, आओ बच्चे आओ, जैसे हमें फिर देह में हम खींच के आते थे, बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, और फिर एक जाता था दूसरा आता था, उसको भी यही सब अनुभव होते थे। तो सबसे बड़ी बात जो बाबा ने हम लोगों को सिखाई वो ये कि यज्ञ स्नेही अगर हम बच्चों को बनना है, पहले हम स्वस्नेही बने, अपने से प्रेम करना सीखे। जिसको अपने से प्रेम करना आता है वो सबसे प्रेम कर सकता है, विश्व की हर आत्मा से प्रेम कर सकता है, उसके मन में किसी के प्रति भी कोई घृणा भाव, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी भाव नहीं होगा। अपने से प्रेम का तात्पर्य हम कौन है, पहला लेसन हम सब कहते हैं ना, कौन है हम? आत्मा। तो अपने शरीर से तो प्रेम करने वाले दुनिया में सभी हैं, हर एक अपने को बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, एक्टिव, वो सब समझता है, लेकिन अपने से प्रेम अर्थात अपने को आत्मा समझ और सभी को उस भाव से देखे। तो थ्योरिटिकल ये नॉलेज तो हम सबके पास है, पहले दिन से हमें सिखाया गया है, लेकिन अपने शक्ति अनुसार हम सब ने उसे धारण किया है, लेकिन बाबा ने उसकी धारणा में नंबर वन ले लिया। कैसे लिया बाबा ने? हम सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है, सुनी है, बाबा ने लिख लिख कर भी पक्का किया, डायरियां भर दी और सब ये सब जो किया। तो पहला लेसन हमें ये सीखना है कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो है हमारे पास, लेकिन क्या मैंने भी लिख करके या दूसरे की भ्रकुटी में देख करके, अनुभव करके ये पक्का किया है, अपने से प्यार करना मैंने सीखा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। जितना ये होगा उतना दूसरे भी को भी हम आत्मिक स्वरूप से देखेंगे, और साथ ही साथ जितनी हमारी ये भावना होगी उतना हमारा ऑरा सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऐसा मैग्नेटिक पुल होता जाएगा। कभी पिछले वर्ष ही हम रशिया में थे, वहां पर काफी कार्यक्रम रशिया वालों ने रखे हुए थे लगभग एक मास तक, और वो वर्ष रशिया ने डिक्लेयर किया हुआ था ईयर ऑफ मतलब एनवायरनमेंट का, और इस कारण से वहां पर बहुत सारी संस्थाओं ने ये सब जो कार्यक्रम किए थे, उस रेफरेंस में हमारा एक संस्था के कांटेक्ट में आना हुआ जिन्होंने जो विशेष खास आए थे और जिन्होंने दादी जानकी जी का भी इंटरव्यू लिया था, आपने नाम भी सुना होगा, किरलियन फोटोग्राफी वालों का। किरलियन फोटोग्राफी रशिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके गया किरलियन, उसने ऐसे कैमरे का आविष्कार किया था इजाद, नॉर्मल कैमरा में हम सबकी फोटो आती है लेकिन उसके द्वारा जब फोटो खींची जाती है तो उसका लाइट का ऑरा भी उसमें आता है, जैसा व्यक्ति होता है उसका अंदर का चित्रण उस ऑरा में आ जाता है, यानी लाइट, जैसे हम देवी देवताओं के चित्रों में लाइट देखते हैं ना, तो जो आत्मा जितनी शुद्ध होगी पवित्र होगी, जैसे देवी देवताओं के ऑरा होते हैं गोल्डन होंगे, कुछ येलो टाइप व्हाइट टाइप का, जो लाइट का ताज जो बाबा बोलता है, और वो वहीं तक सीमित नहीं होता, उनकी जो मशीनरी होती है हमारे मतलब एक एक अंग से वो लाइट निकलती है, इस आंख से तो नहीं देख सकते लेकिन वो मशीन ऐसी होती है, आप हाथ रखेंगे तो जैसा आपका अंदर विचार चल रहा है वैसा लाइट का ऑरा, हर उंगली का अंगूठे का पूरा सारा ऑरा आ जाता है। तो वो लोग भी आए थे, उन्होंने 2 घंटे तक टेस्ट किया, ऑरा वगैरह निकाले, और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जब दादी जी भी आए थे, और जो बीकेज आते हैं जो पुराने बीके होते हैं, तो जब भी हम ये ऐसा ऑरा लेते हैं, और रिपोर्ट भी वो निकालते हैं, करीब 60-70 पेज की रिपोर्ट होती है पूरी की पूरी, और वो देते हैं हर एक इंडिविजुअल को, तो वाकई आप लोगों का जो बीकेस का है वो दुनिया वालों से ऑरा बहुत डिफरेंट होता है, और हमने आपका ऑरा देखा, तो उसमें ऑरा में जैसा वो समझते हैं, दादी जी का तो बहुत हाई निकला था, और दादी जी के बाद और सीनियर भाई लोग जो गए हैं भाई बहने उनका ऑरा, तो वो इंटरप्रेट करके बताते हैं, और हमें फिर बाबा की याद आई कि बाबा ने कहा था कि अंत में विज्ञान वाले आएंगे, वो सबके ऐसे ऑरा अपने वैज्ञानिक मशीनों से वो ये सिद्ध करेंगे कि ये ही हैं, बीके ही हैं, हम चाहे जितने भी अपने को बताएं, लेकिन आध्यात्मिक लोगों से या रिलीजियस लोगों के प्रति दुनिया वालों की उतनी धारणा बहुत ऊंची नहीं होती जितनी विज्ञान के प्रति होती, और विज्ञान जो बात बोल देता है उसको सारी दुनिया सहज मान लेती है। तो अभी वो समय आ गया है जब वैज्ञानिक लोग ये सिद्ध करते के निकट पहुंच गए हैं कि हमने राधा स्वामी का, स्वामी नारायण का, इनका 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 बहुत क्रिश्चियंस के मुस्लिम्स के कईयों के ऑरा देखे, लेकिन बीकेस का जो ऑरा है इनमें जो पवित्रता की डिग्री है वो एक बहुत ऊंची श्रेणी की है। तो ये एक समाप्ति की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, जो बाबा कहता है प्रत्यक्षता का, ये हमारे अंदर जितनी जितनी पवित्रता होगी, और ये शायद अगर बाबा के टाइम में होता तो बाबा का 100% ऑरा वैसा निकलता साकार बाबा के समय। तो पहली बात जैसा मैं बता रहा था, जितना हमारा अपने प्रति, और बाबा ने उसकी मेथोडोलॉजी भी बताई है, अपने से जितना स्नेह होगा, जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, तो बाबा जब भी दृष्टि देता था किसी के, जैसी दृष्टि दी दूसरा विदेही हो जाता, जितना हम आत्मिक स्थिति में खुद स्थित होंगे उतना दूसरों को दृष्टि देंगे, दूसरों के समीप आएंगे हमारे ऑरा में इतना आकर्षण होगा उन्हें भी विदेही बना देंगे, क्योंकि जो भी चीज होती है उसका उसका मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट होता है तो हमें भी सेटिस्फेक्शन होता है दूसरों को भी सेटिस्फेक्शन होगा। मानो तबीयत ठीक नहीं है, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट से देख लेते हैं हाई है या टू लो है, तो पता चल जाता है, दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से बुखार का है या कोई भी स्थूल चीज होती है, ऐसे ही सूक्ष्म में भी ना अभी विज्ञान भी धीरे 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 करके उसकी तरफ आता जा रहा है सूक्ष्मता की ओर पर। एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी होती है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, अहमदाबाद में भी उसका बहुत बड़ा केंद्र है, तो वो उन्होंने भी ये रिसर्च की तरफ आ रहे हैं जो बाबा ने कहा है। ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से डेविएट इसलिए कर रहा हूं, इसका कनेक्शन संपूर्णता से। तो अभी तो हम जैसे रिमोट से टीवी चला लिया, इवन यहां पर रिमोट से बड़े बड़े वो जो होते हैं रॉकेट छोड़े जाते हैं, मून पर जाते हैं, मार्स पर जाते हैं, मंगल ग्रह वगैरह, यहां से ही हम करेक्शन कर लेते हैं उनके रास्ते में। लेकिन उन्होंने जो रिसेंट रिसर्च की तरफ आए हैं कि मेंटल फ्रीक्वेंसी से, मन की फ्रीक्वेंसी से हम दूसरी चीज को ऑपरेट कर सके, चला सके। जो बाबा ने कहा है सतयुग में पुष्पक विमान कैसे होंगे, बस गए हम और बस संकल्प किया, हाँ भाई पुष्पक विमान चलो वहां पर उड़ के लंदन चलो, रशिया चलो, जो हमारे पिकनिक स्थान होंगे, और वो चल पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं माइंड मैटर इंटरफेस। वो मैटर है जितनी चीज देख रहे हैं, लेकिन अभी मैटर टू मैटर इंटरफेस तो है, यहाँ चैनल बदल दिया, कोई भी रिमोट से कार्य कर लिया, लेकिन उसमें मेंटल फ्रीक्वेंसी से बात होगा। और विज्ञान काफी हद तक उसके नजदीक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक वो फ्रीक्वेंसी जितनी मेंटल फ्रीक्वेंसी की प्योरिटी चाहिए, वो अभी तक उन लोगों को उसमें नहीं मिली है पूरा। और जैसे ही वो मिलेगी, वो हम उस फ्रीक्वेंसी और मैटर की फ्रीक्वेंसी से मैच करके संपूर्णता की ओर चल देंगे। तो ये कहने का भाव क्या है कि बाबा का पुरुषार्थ जो था ना, वो इस डायरेक्शन में था। साकार बाबा के साथ रहने का हमें जो मौका मिला और जो अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, लेकिन बाबा वहां तक पहुंचे कैसे, वो मुख्य बात है। आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा, जब बाबा को ज्ञान हुआ, जीवन परिवर्तन, वो सब तो हम लोगों ने सुना है। लेकिन 1961-62 के बाद जब बाबा से मिलते थे, बाबा हम लोगों की बात बड़े गौर से, ध्यान से सुनते थे, समाधान देते थे उसका। लेकिन जैसे समय बीतता जा रहा था, 1965-66 वगैरह में जब मिला करते थे, तो थोड़ी बात बोलते थे हम, दो तीन लाइन, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। हम कहते थे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है। वो कहते थे कि नहीं नहीं बाबा समझ गया, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब हम आसाम में पोस्टेड थे और आसाम से बाबा ने कैसे हमें बुला लिया, 17 जनवरी 1969 को यहां पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा के सम्मुख ही थे यहाँ पर मधुबन में साथ साथ। तो बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी ना, तो उसमें कुछ जो मुख्य बात देखी जो डायरेक्ट आज से संबंधित है, तो एक मुख्य बात तो ये देखी बाबा से, उन 17 और 18 जनवरी 1969 में 5-6 बार मिलना हुआ बाबा से। बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा की देखो मेंटल फ्रीक्वेंसी जो विज्ञान आज ढूंढ रहा है, उस समय बाबा की मेंटल फ्रीक्वेंसी कर्मातीत उस बाबा ने हासिल कर ली। कैसे कर ली, बस बाबा के सम्मुख जाते थे सोच के कि बाबा से ये पूछेंगे, ये स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति की बात, ये विश्व सेवा की बात, क्लास की बात, या कोई समस्या की बात, कोई। बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, लगता था जैसे कोई रे, लाइट की रे आ रही है, और बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बस बाबा ने दृष्टि दी, माइंड मन का भाव बिना हमारे एक अक्षर बोले सुन लिया और उसका समाधान दे दिया। ये है एक संपूर्णता का कर्मातीत अवस्था का लक्षण, जो वो ही आत्माएं हासिल कर सकती हैं। कौन सी आत्माएं? जो संपूर्ण रीति से जिन्होंने बाबा को फॉलो किया होगा, बाबा ने हासिल करके दिखाया और बाबा के कदम पर कदम चल के हम सब लोगों को भी ये हासिल करना है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, उन दो दिनों में 6-7 बार जब बाबा से मिलना हुआ, हर बार ये अनुभव हुआ कि एक अक्षर बोले बिना बाबा ने मन की बात पढ़ के उसका समाधान दे दिया। बड़ा आश्चर्य होता था। तो जब बड़ी दीदी होते थे उनसे पूछा तो दीदी ने बताया कि देखो, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो कर्मातीत अवस्था के निकट वाली आत्मा चूंकि संपूर्ण रीति से मन जीते जगत जीत बन चुकी होती है, इच्छा मात्रम अविद्या हो चुकी होती है, और चूंकि मन के संकल्पों पर पूरा विजय होती है, इसलिए वो दूसरे के संकल्पों को तुरंत पढ़ के उसके संकल्पों को समाधान कर सकती है, उसका उत्तर उसे पूरा मिल जाए। और ये हर बच्चे को आवश्यक है, इस बात की आवश्यकता, क्योंकि अभी अंत समय में ऐसा होगा कि जब आत्मा हम लोगों के सामने आएंगी, अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर के आत्मा आएंगी, और जब ये जब अनेक प्रकार की इच्छाएं लेके आएंगी, उस समय ये समय तो होगा नहीं कि हम उन आत्माओं की सुने। एट ए टाइम दसियों आत्माएं आएंगी, बहुत आत्माएं, उस समय क्या होगा? बस सम्मुख आई, हम लोगों के अगर इच्छा मात्रम अविद्या बने होंगे, मन के संकल्पों पर विजय होगी, उन आत्माओं को पढ़ सकेंगे कि संकल्प क्या है और उनका समाधान वो अनुभव करेंगे, और बस यही बाबा ने कहा है, वो पार्ट चलना है कि रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो वो कब होगा? जब उस आत्मा हम बच्चों के सम्मुख आएंगी, और ये हम बाबा के सम्मुख अनुभव किया करते थे। जो भी संकल्प होता था, बाबा संकल्प पढ़ के उसका तुरंत समाधान ही नहीं देता था, वो अनुभव करा देता था, और बस आत्मा तृप्त होके चली जाती थी। तो ये स्थिति कब प्राप्त होगी? जितना जितना हम यज्ञ के निकट आते जाएंगे। बाबा भी तो प्रवृत्ति वाला था, घर गृहस्थी वाला, बच्चे, बिजनेस, सब कुछ था, लेकिन साथ साथ बाबा ने जब ये सुना, सबसे पहले पहले बस जब बाबा ने साक्षात्कार कराया कि ऊपर से स्टार आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रही है, नई दुनिया देखने में बाबा तल्लीन थे, खुश हो रहे थे ध्यान में, तो बाबा के कान में आवाज आई, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और जब से बाबा ने वो शब्द सुने, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तब से बस बाबा उसमें खो गया। कैसे बनाऊंगा, कौन था, किसकी आवाज थी, कैसे ये दुनिया बनेगी? बस हम बच्चों को भी यही करना है। केवल बाबा ने तो ध्यान साक्षात्कार किया, लेकिन हम सब भी तो वही दुनिया बनाने के निमित्त है, बाबा के कार्य में संलग्न है। तो बाबा को जैसे रात दिन उसी का ही वो ओना रहता था, फुरना रहता था, वही बस अब हमें रहना चाहिए। ऐसी दुनिया बनाने के लिए मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे द्वारा ये दुनिया बना रहा है। और जब हमारा जितना ये होगा, मेरे द्वारा ये दुनिया बाबा बना रहा है, तो क्या होगा? फिर हम खुद रोल मॉडल बनते जाएंगे। हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो कि यज्ञ मर्यादा के विरुद्ध हो, विपरीत हो, क्योंकि क्योंकि अभी हम सब बच्चों के सामने ना ये पेपर, अनेक पेपर आते हैं, लेकिन बाबा ने बताया है आप बच्चों के सामने अभी विशेष करके दो प्रकार के पेपर आने, अंत का समय आ रहा है ना, तो वैसे तो बाबा ने बताया है अनेक प्रकार के पेपर, आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर होगा, अब हम बच्चों के सामने पांच तत्वों का पेपर होगा, अशुद्ध आत्माओं का पेपर होगा, पांच विकारों का, पुराने संस्कारों का आदि आदि, लेकिन एक पेपर हम बच्चों के सामने, सबके सामने जो आएगा अंत समय, कौन सा? अपने शरीर का पेपर। ये बाबा ने कहा है, ये कोई न समझे कि मैं तो स्वस्थ हूँ, युवान हूँ, अभी मेरे सामने क्या आएगा, वो तो ये अंतिम जन्म का शरीर है, लेकिन जो 63 जन्मों के जो संस्कारों का जो पेपर है, कई रीति से वो चुकतु होना है, और उसमें सबसे मुख्य पार्ट शरीर के द्वारा चुकतु होना है। तो इसके लिए क्या करें, कौन सा अभ्यास चाहिए, क्योंकि जितना भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, बाबा ने कहा है उतना उतना ये गुह्य पेपर, महारथी होंगे तो महारथी के रूप में पेपर उनके सामने आएंगे। तो जब ये शरीर का पेपर आए, तो बाबा ने कैसे पेपर पार किया, बाबा को एक सेकंड में देह में आने का अभ्यास, एक सेकंड में देह से न्यारा होने का अभ्यास। जब बाबा से पार्टी मिलती थी तो या तो यहाँ झोपड़ी में, या बाबा के कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में, जैसा होता था, बाबा के कमरे में 2-3 लोग होते थे, वहां मिलते थे, 5-6 होते थे, झोपड़ी में मिल जाते थे, या बड़ी पार्टी होती थी, 15-20 की पार्टी तो उस समय बहुत बड़ी समझी जाती थी, तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। बस जो टाइम दिया होता था, टीचर जाती थी पार्टी लेके, देखा है बाबा बैठे हैं, आंख खुली है, लेकिन किसी दूसरी स्थिति में मग्न है, देह से न्यारे है। टीचर जाती थी सामने, टीचर कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे जर्क सा लगता था कई बार, और बाबा जैसे देह में आया, और फिर बाबा, अच्छा बच्ची आ गए, अच्छा पार्टी लाए हो, आओ आओ बुलाओ बच्चों को, सब बच्चे बैठते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, गोदी देते थे, एक जाता था दूसरा आता था, सबसे मिलते थे, और फिर बाबा पार्टी गई, फिर एकदम देह से न्यारे। तो हम सब लोगों को देह में आने का अभ्यास तो पक्का है, लेकिन देह से न्यारा होने का अभ्यास वो उतना पक्का नहीं है, उसमें समय लगता है। आते हैं क्लास में बैठते हैं, लाल लाइट भी होती है, गीत भी होते हैं, फिर भी योग की स्थिति प्राप्त करने में समय लग जाता है, और जैसी सफेद लाइट रही, जिसके लिए तो तैयार रहते हैं, तो तुरंत ही देह में आ जाते हैं। लेकिन बाबा को जैसे हमें यह अभ्यास पक्का है देह में आने का, वैसे ही देह से न्यारा होने का अभ्यास पक्का हो जाए, और उसमें फायदा क्या होगा सबसे बड़ा, कि देह की कोई भी व्याधि होगी वो महसूस नहीं होगी। दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी के पास भी हम लोग अंत समय में, जब बहुत लास्ट के 2-3 ईयर में लगभग रोज ही मिलते थे, तो दादी को कहते थे, दादी इस व्याधि में तो आपको बहुत पेन हो रहा होगा, दर्द होगा। नहीं, दादी कहते थे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो देह से एकदम न्यारी होने का, जब कभी भी थोड़ा भी अभ्यास होता है, मैं ये महसूस, मैं आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, अलग हूँ, अशरीरी हूँ, बस शरीर में अगर होता रहे, जब अगर आत्मा न्यारी हो जाती है तो उसे महसूसता ही नहीं होगी। तो एक ये अभ्यास हम लोगों को जरूरी है, जब चाहे हम देह में आए और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, एक ये बात। दूसरी बात, दूसरा पेपर जो बहुत बड़ा है, हाँ, वो कौन सा पेपर, हम स्वस्थिति से परिस्थिति को बदल सके। अभी क्या होता है, परिस्थिति हमारी स्वस्थिति पर हावी हो जाती है, बाहर की पर, मानो किसी की डेथ में गए, बाहर का वातावरण गमगीन है और वैसा है, तो वैसी स्थिति हमारी हो जाती है। कोई अच्छे माहौल में गए, फेस्टिवल का माहौल है, खुशी का माहौल है, हमारा मन भी वैसा ही खुश में आ जाता है। इसका मतलब बाहर की परिस्थिति वो हमारी स्वस्थिति को बना रही है। बाबा का बिल्कुल उल्टा था। अभी उस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर तो बहुत दुख अशांति होंगे, और जब चारों तरफ हाहाकार होगा, किसी भी समय शरीर छोड़ने का वक्त आ सकता है। तो बाबा को क्या था, स्वस्थिति से परिस्थिति पर तुरंत कंट्रोल। कैसे, बाबा को कई बार खांसी बहुत आती थी, ओल्ड एज थी, 93 इयर्स की एज थी, बस खांसी आते आते कई बार हम लोगों को लगता था बाबा को तो बड़ी कष्ट हो रहा होगा, आंख भी जैसे गीली जैसे हो जाती थी। लेकिन दूसरे ही क्षण, जब काफी खांसी भी होती थी, दूसरे ही क्षण बाबा के पास लक्ष्मी नारायण का हिस्ट्री हॉल में रखा है ट्रांसलाइट का चित्र, कृष्ण का चित्र रखा रहता था। बस बाबा के, देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, पुराना दुनिया है, और इसे खांसी है, तकलीफ है, ये है, लेकिन कल कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, कितनी नई दुनिया होगी। एकदम बाबा का चेहरा ही बिल्कुल बदल जाता था, और लगता ही नहीं था जैसे 1-30 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले बाबा को इतनी खांसी आ रही थी जो तकलीफ दे रही थी। जैसे ही बाबा अपनी स्वस्थिति में स्थित हुआ, वो परिस्थिति तुरंत चली जाती थी। विजय परिस्थिति के ऊपर, बाबा विजय प्राप्त कर लेता था। ये आज हमें भी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम जितना जितना यज्ञ के और निकट आते जाते हैं, भले घर गृहस्थी में रहें, लेकिन जितना हम यज्ञ के निकट आते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमें, जैसे गृहस्थी में रहते हैं गृहस्थी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे यज्ञ के जितना निकट आएंगे, यज्ञ के सम्मुख आने वाली अनेक अनेक विकट परिस्थितियों का वो सामना करना पड़ेगा। तो आवश्यकता यह है कि हमारी अपनी स्वस्थिति ऐसी स्ट्रांग हो जो उस परिस्थिति को बदल करके वो हल्का कर सके, हमारी स्वस्थिति इतनी ऊंची हो। जैसे प्लेन में होते हैं तो नीचे की समस्या बहुत छोटी, मकान कार सब चीज बहुत छोटी दिखाई देती है, ऐसे बाबा अभी हम बच्चों को चाहते हैं। ऐसे हमारी स्वस्थिति से हम हर परिस्थिति को बदल सके, ऐसी स्थिति हो। जो ये बाबा के देखा साकार में, थोड़ा टॉपिक से डेविएशन है, लेकिन ये आवश्यक है समय के अनुसार ऐसी स्थिति बनाना। और तीसरी बात, अभी जितना परिवार बढ़ता जाएगा ना, तो बहुत पुराने पुराने भी ऐसे भाई बहन मिलेंगे, 25-30-40-50-60-70 साल वाले पुराने, जिनमें हमें बहुत कमियां नजर आएंगी। उससे क्या होगा, जब उनमें ऐसी कमी कोई नजर आएगी तो मन में संकल्प उठेगा, रे मैं तो अभी 10 साल पुराना ही हूँ, उसमें इतने 50 साल पुराने में इतना क्रोध का संस्कार, उसमें ये बात, उस तो मेरे में भी अगर हुई तो क्या हुई है। दूसरे का बात को जब हम देखते हैं, उसका असर हमारे ऊपर, ये पेपर हमारे सामने, परिवार के सामने बहुत बड़े रूप में आ रहा है और साथ में आने वाला है। तो इसके समाधान के लिए बाबा ने क्या बोला है, कि जब कोई भी ऐसी स्थिति हम देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, तो किसी भी आत्मा को हम एक काल की दृष्टि से न देखें। जब हम केवल वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं, हमें उन आत्मा में कोई कमी कमजोरी नजर आती है, जो वर्तमान में जिस कमी कमजोरी से वो आत्मा पास हो रही है। लेकिन हम हर आत्मा को तीनों कालों की दृष्टि से देखें, उसका भूतकाल, वर्तमान जो देख रहे हैं, लेकिन भविष्य काल। और साथ साथ ये समझे, बाबा ने एक बात कहा हुआ है, क्या, कि एक एक जो ब्राह्मण बच्चा है वो मेरा सेलेक्ट किया हुआ बच्चा है, मैंने उसे चुना है, और इस कारण से वो मेरा चुना आज का चाहे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उससे भी वो बच्चा महान है, जो लास्ट में लास्ट मेरा चुना हुआ बच्चा है, उनसे भी वो महान है। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें वो कोई ऐसी विशेषता देखी है भगवान के महावाक्य जो समय पर उसमें प्रत्यक्ष होगी और उसके द्वारा यज्ञ को प्रत्यक्ष करेगी। आज भले उसकी वो स्थिति हमें ध्यान में देखने में नहीं आ रही है, लेकिन उस बच्चे को मैंने चुना है तब वो यहाँ है, और हर बच्चा जो है मेरा चुना है हुआ है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए जब भगवान ने उसको चुना है तो हम उसके चुनने पर क्यों एक क्वेश्चन मार्क लगाएं? आज अगर हमें कोई कमी दिख रही है किसी भी ब्राह्मण परिवार के बच्चे के अंदर जो हमारी अवस्था को भी ऊपर नीचे कर देती है, लेकिन हम एक तो ये सोचें ये भगवान का चुना है और समय पर इसकी प्रत्यक्षता होगी, ये वर्तमान हम न देखें, उसको ये देखें कि ये वही आत्मा है डबल ताजधारी जो विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाली आत्मा है। आज उसका ये पार्ट है, कोई फिल्म होती है नाटक होता है तो उसमें भी सारा पार्ट एक जैसे थोड़ी होते हैं सबके, कोई हीरो होगा कोई विलेन होगा कोई कॉमेडियन होगा कोई नाचने वाला, हर एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं, तभी तो उस ड्रामे की विशेषता है। और बाबा ने अपने ड्रामा के लिए क्या कहा है? बाबा ने कहा ये ड्रामा मुझे अति प्रिय है, इससे और अच्छा ड्रामा नहीं बन सकता था। तो जो भगवान को प्रिय है वो हमें प्रिय है, तो ड्रामा की किसी भी सीन को देख करके न हमें दुख हो न आश्चर्य हो, बल्कि ये हो मन में जो बाबा ने कहा, जो कहने के लिए तो भले गीता में लिखा हुआ है, हम सब भी कह देते हैं जो हुआ अच्छा हुआ अच्छे से अच्छा हुआ आदि आदि, लेकिन अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि हाँ इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता था, ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट वो बना हुआ है। तो इसलिए किसी भी आत्मा के कोई भी पार्ट को हाँ उसे साक्षी होकर के हम देखते चले, साक्षी दृष्टा होकर के। कैसे होंगे? कहना तो बड़ा आसान है हर चीज को, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखते हैं मन के ऊपर प्रभाव डाल देती है वो चीज। इसके ही नहीं तो सूरदास ने भी अपनी आंखें फोड़ दी थी कि भाई दृष्टि है चंचल हो जाती है विकारी हो जाती है, लेकिन वास्तव में दृष्टि का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? दृष्टा का दोष है। आत्मा जो है वो दृष्टा है, ये आंखें ये दृष्टि है, ये तो निर्जीव चीज है, आंखें खिड़की है मकान की, लेकिन इससे देखने वाले दृष्टा यानी आत्मा जो देखती है। जब हम इस स्थिति में रहते हैं कि मैं दृष्टा इस दृष्टि से जो बाहर का वो है वो दृश्य है वो देख रही हूँ, आत्मा का पार्ट देख रही हूँ, तो क्या होता है? वही चीज फिर दृष्टांत बन जाता है जो शास्त्रों में लिखा जाता है, पूरा आधा कल्प तक जिसका गायन होता है। लेकिन किनका गायन? जब हम साक्षी दृष्टा होकर, तो ड्रामे का ज्ञान तो हम सबको है लेकिन साक्षी होकर देखने का ज्ञान वो प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत है, और वो बाबा में हम देखते थे एकदम बिल्कुल बड़े से बड़ी भी घटना हो गई। हमें तो एक बात की याद है, आप सबने सुनी होगी, मुरली में भी कई बार आती है, कलकत्ते में प्रदर्शनी हो रही थी, लगाई हुई थी टेंट में, और समाजियों ने किसी ने आग लगा दी, सब कुछ जल गया। बाबा के पास समाचार आया, और तब हमारे तीन मुख्य वकील भाई होते थे, हा? ये संतराम जी त्रिलोकचंद जी और मोतीलाल जी वगैरह, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी कानपुर के थे। तो उन्होंने कहा बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद है, फोटो ली है, उन्होंने आग लगाई है, उनका ये है वो है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बस ये जो हुआ आगे से के लिए सबक लेना चाहिए, आगे करो इंश्योरेंस कराओ आदि आदि, लेकिन क्या बाप बच्चे के ऊपर केस कर सकता है? आप सब भी दुनिया वालों के लिए हम सब जो हैं वो माता पिता समान है। दुनिया हमारी तरफ उन महान नजरों से देख रही है, शरीर रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से हम दुनिया की नजरों में बहुत महान हैं। तो कभी भी दुनिया वाले जो करें हमें उस ढंग से उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। तो ये बाबा का कितनी घटनाओं में देखा, बाबा बिल्कुल साक्षी होकर के कभी भी उस आवेश में आना या उसमें नहीं आते थे। और ये ही चीजों ने बाबा को धीरे 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 साक्षी होते होते कर्मातीत अवस्था की तरफ बाबा को धीरे धीरे बढ़ा दिया। साथ साथ और क्या, बाबा में ये विशेषता थी, जितना हम यज्ञ के निकट, क्योंकि कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ समान हैं, कुछ छोटे हैं, यज्ञ में ये तो हमेशा ही रहेगा। आज जिनसे आप छोटे हैं कल और आने वाले उनसे बड़े हो जाएंगे, और ये तो हमेशा की परंपरा रही है। तो ऐसे समय में जब भी बाबा का देखा, हमने दादियों का देखा, क्या किसी से कोई नुकसान हुआ, आपस में कोई झगड़ा हुआ, कोई ऐसी बात हो गई जो यज्ञ की मर्यादा के विपरीत थी, बहुत सारी, क्या करते थे बाबा, उस व्यक्ति को बुलाया, बुला करके पहले उसकी बहुत, जो उसने हमेशा तो कोई गलती करता नहीं, हरेक में गुणों का और अवगुणों का मिश्रण होता है, तो जो उसने अच्छी अच्छी बातें की हैं पहले बाबा उसका वर्णन करते थे। देखो तुमने ये सर्विस करी, कितना अच्छा हुआ, ऐसा करा उससे कितनी सेवा हुई, ये करा इससे यज्ञ को कितना लाभ हुआ, आदि आदि पुरानी घटनाओं का वर्णन करके उसका मानसिक स्तर इतना हाई कर देते थे जिससे वो रिसेप्टिव मूड पर आ जाता था, यानी कोई बात को स्वीकार करने का। हर मनुष्य अपने अपना मान चाहता है, हर मनुष्य इज्जत चाहता है, महिमा चाहता है, तो पहले उसका ये करके बाबा उसके वो उसको एप्रिसिएशन दे करके उसका मेंटल स्टेटस ऊंचा कर देते थे। ये दादियों में भी हमने देखा, इतने साल तक दादी जी के साथ रहे, इतना यज्ञ में देखा, तो ये पहले हम किसी को भी शिक्षा देनी हो एकदम आउटराइट हम शिक्षा न देते, वो शिक्षा नहीं होती, वो उसके ऊपर जैसे डंडे का काम करता है, कोई घटना हुई तुरंत उसके ऊपर गुस्सा हुआ या उसे शिक्षा दी, नहीं, उसको अलग बुला के एक तो ये करा, और उसके बाद जब वो रिसेप्टिव मूड में आ जाता है तब उसे फिर जब कोई भी बात बताई जाती है, और कई बार तो बताने से पहले ही वो खुद कहता था, बाबा या दादी आप तो महिमा कर रहे हैं लेकिन मेरे से ये गलती हुई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, क्योंकि बाबा ने उसका मेंटल स्टेटस इतना हाई कर दिया कि उसको अपनी गलती स्वयं महसूस होने लगी, नजर आने लगी। होता क्या है, हम दूसरे को कह करके उसकी गलती जब महसूस कराते हैं उसे स्वीकार्य योग्य नहीं होती, अरे बहुत लोग ये करते हैं, बहुतों में ये कमजोरी है, लेकिन एक बार उसका जब हमने मस्तिष्क लेवल का ना मन की बात ऊंची कर दी वो खुद, और जब अगर थोड़ी सी शिक्षा भी दी जाती थी तुरंत ही वो स्वीकार करके, और देखा गया फिर उनसे वो गलती कभी रिपीट नहीं होती। ये आवश्यकता जब संगठन में हम रहते हैं, इसलिए कहा जाता है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है, बुद्धि के विकास के लिए एकांत आवश्यक है और चरित्र के विकास के लिए संगठन आवश्यक है। जब संगठन में रहते हैं तो हमारे से कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि जिस पर लोग टीका टिप्पणी करें, हमें ख्याल होगा कि हाँ सब देख रहे हैं। हमेशा विकारों के वशीभूत, कमजोरियों के वशीभूत व्यक्ति जो है ना वो जब अपने को स्टेज पर समझता है तब इतना नहीं होता, और बुद्धि के विकास के लिए एकांत की दोनों आवश्यक है। तो एकांत भी जो बाबा ने हम लोगों को कायामृत वेले एकांत में सुबह 4 से 8 बजे तक मुरली सुनो, अपना चिंतन करो, बाबा से रूह रोहान करो, वो एकांत है बुद्धि का विकास, और बाकी सारा दिन जो है संगठन में रह के उसमें चरित्र का विकास, ये दोनों ही आवश्यक हैं सतयुगी देवी देवता बनने के लिए। इसीलिए अगर एक पार्ट मिस होता है तो हम अधूरे ही रह जाएंगे, जैसे देवी देवताओं की संपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक तो ये साथ में आवश्यक है, जो बाबा ने अपने चरित्र से इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार होते हुए भी बाबा ने कभी भी एकांत, अक्सर देखो बाबा बस यहाँ सामने है जो आंगन है, हाथ पीछे करके अपनी मस्ती में टहलता होता था, संसार को सकाश दे रहे हैं, कभी कोठरी में कभी झोपड़ी में, और लगता था जैसे बाबा लाइट हाउस है, पावर हाउस है। और साथ में क्या हमारा ये प्रत्यक्ष होना चाहिए रूप, तो बाबा हमेशा कहता था बच्चे इतनी खुशी हो तुम में, जो अगर अंदर कोई गम है उस गम को खा जाए। कोई भी खुशी में क्या करना चाहिए, बहुत बार बाबा ने कहा मुरलियों में क्या करना चाहिए, ठग्गियां मारनी चाहिए। हाँ सिंधी शब्द है ना, सुना होगा ना, तो हमें तो मालूम नहीं था। एक बार बहुत पहले तो बाबा ने करके दिखाते थे, कई बार बाबा देखा है बच्चे ठग्गियां कैसे मारते हैं कि नहीं, बाबा बाबा खुद बताता था बस ऐसे, बस ऐसा ये ठग्गियां जैसे मारना हुआ, और ऐसा लगना चाहिए चेहरे पर बाबा के ऐसे भाव आने चाहिए। थोड़ी देर पहले ही खांसी आ रही थी, कोई बात बाबा बता रहे थे, दूसरे ही क्षण खुशी में परिवर्तित होके इतना हो खुशी में खग्गिया मारो बच्चे, और ये खुशी तुम्हारी स्थायी बन जाएगी 2500 साल तक के लिए। लेकिन यहाँ मन के अंदर ऐसा हो जो, और मन के अंदर अगर खुशी होगी तो बाहर तो प्रदर्शित होगी, चेहरे पर रिफ्लेक्शन होगी, भले स्थूल रीति से हम चाहें ये खग्गिया न मारे लेकिन स्थूल रीति से तो चेहरे पर प्रदर्शन होगा उसका। तो आवश्यकता यह है, हमारा ज्ञान भले अंदर का तो है लेकिन चेहरे से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो बाबा का दादियों का प्रत्यक्ष रीति से रिफ्लेक्शन होता था। और जो बाबा दुनिया वाले भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो खुशी है चेहरे पर तेज है, वो दुनिया वालों के नहीं है। तो दुनिया वालों की तुलना में तो हम आगे हैं, लेकिन हम अपने से कंपेयर करें जो हमारी कर्मातीत अवस्था है उससे हम अभी कितना दूर है। जो बाबा हमेशा करता था, क्या करता था ब्रह्मा बाबा, जब बाबा को पता चला, आपने सुना होगा गुलजार दादी जब 9 वर्ष के थे और वो ध्यान में गए तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का जब पार्ट खुला तो फिर बाबा क्या करता था, जब बाबा को पता चला कि वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा मुझे वैसा बनना है, और संदेशी से जब वो पूछता था क्या अंतर है, तो संदेशी अक्सर बताया करती थी कि बाबा शक्ल सूरत तो वही है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की और आपकी, लेकिन लाइट में अंतर है, तेज में अंतर है। जब ऊपर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को देखते हैं बहुत तेजोमय है, लाइट है, उनके सम्मुख जाते हैं एक एक इंद्रिय से कर्म इंद्रिय से तेज निकलता है, उनका चलना टहलना खाना पीना, और वो बाबा ने प्रत्यक्ष करके दिखाया था, करवा के आप सबने सुना होगा यज्ञ में मेरठ में दादी का होते थे, क्या नाम था उनका, कमल सुंदरी दादी, उनके अंदर पता नहीं बहुत दिनों तक 30 महीने भर तक जैसे ऐसे आत्मा सतयुगी आत्मा का आमंत्रण देके बुलाया, तो सबको पता चले कैसे खाना पीना रहना करना। तो अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो जितना हमारी बुद्धि में होगा ना, तो बाबा हमेशा बीच बीच में पूछा करते थे, हाँ बच्ची अब बताओ अब बताओ, बाबा को शौक रहता था, अब ये बाबा अब आपका आप बिल्कुल उसके निकट आ रहे हैं, अब आप बिल्कुल ऐसा लगता जा रहा है कि आप में अंतर तो है। और अंतिम दिन मैं तो यहाँ पर था, 18 जनवरी को अंतिम दिन बाबा ने क्लास कराई यहाँ पर, और बस क्लास करा के बाबा उठे, और उठ के उस दिन क्लास जल्दी कराई बाबा ने, पहले ही अनाउंस कर दिया, रोज क्लास 8:45-9 बजे होती है, उस दिन अनाउंस कर दिया आज बाबा क्लास, बाबा ने बुलाया जमुना प्रसाद भाई को कि आज अनाउंस कर दो बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब लोग भोजन आदि करके 7:30 तक मानो इकट्ठे हो जाए, सब आ गए। तो ये जैसे है कि जो भीष्म पिता माँ का है इच्छा मृत्यु, हम बच्चे भी को भी अपना ये आभास होना चाहिए जितना जितना हाँ हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और बाबा को जैसे उस दिन आभास हो रहा था, पहले बाबा ने क्लास कराई बिल्कुल, और उसके बाद बाबा क्लास से उठे, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो किस बात का प्रतीक है? कर्मातीत अवस्था का, कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो शरीर में भले व्याधि होगी, रोग होगा, तकलीफ होगी, लेकिन हमारे जो कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा और हम बिल्कुल कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ जाएंगे। बाबा उठे, एक कदम बढ़ाया, फिर बाबा रुके, फिर बाबा ने तुरंत सबको दृष्टि देने लगे, फिर बाबा थोड़ा एक दो कदम आगे बढ़े, फिर रुके, फिर एक एक को दृष्टि दी। तो हिस्ट्री हॉल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दरवाजे तक जाते जाते बाबा तीन चार बार रुके और बस हर एक बच्चे को इतनी दृष्टि दी, और बार बार बाबा की दृष्टि दादी प्रकाशमणि जी की तरफ आके रुक जाती थी और बिल्कुल बहुत दृष्टि देके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। और बाद में अंत में तो सुना ही है सबने, बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये टेप में अभी भी अक्षर भरे हुए हैं। तो बाबा ने पहले कभी भी नहीं बोला, लेकिन ये इस बात का सूचक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे हमें भी आभास हो जाएगा, हम भी मेंटली जैसे तैयार होंगे, बाबा बस हम भी अब आपके पास आए कि आए। अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु का वरदान ये ही लेना है कि जिस समय हम जाएं हमें पहले से आभास हो, क्योंकि सारा पुरुषार्थ हमारा उसी एक सेकंड के लिए हो रहा है। कौन सा? जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि अंत मते सोगति का गायन है। सारे जीवन भर हमने बहुत पुरुषार्थ किया और अंत में अगर हमारा शरीर बाहर की परिस्थिति वश अगर छूट गया, अर्थक्वेक आया, ये बिल्डिंग गिरी, ऊपर से भीम गिरा, हाहाकार मच रहा है, हमारे भी खून हड्डी टूट गई खून, तो ऐसे समय में परिस्थिति में बाबा की याद की स्टेज क्या होगी? भले बाबा बाबा करेंगे लेकिन याद की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होगी, और अंत मते अगर उस समय शरीर छूट गया तो गति कैसी होगी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा यही चाहता है कि ऐसी स्थिति, और उसके लिए बाबा ने बता दिया है, जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी, जैसे ही पांच तत्व की अति हलचल होगी, जैसे ही जब शरीर छूटने वाला होगा, आपके कदम ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। इधर अभी यहां है लेकिन ऑटोमेटिकली बुद्धि को टच होगा उधर की तरफ। कम से कम सात आठ घटनाएं तो हमें मालूम है, कछभुज से लेकर लातूर का, अदर अदर जहां पर साइक्लोन, चेन्नई का आदि आदि, जहां पर बीकेस को बाबा ने ऐसे मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया, जहां उनके साथ जो पांच मिनट पहले थे वो शरीर छोड़ना पड़ा। तो बीकेस की भी बुद्धि का ये वॉइसलेस कनेक्शन जितना हमारा होगा उतना ही बाबा बंधा हुआ है हमें इच्छा मृत्यु का वरदान देने के लिए। बस हम इच्छा से और ऑटोमेटिकली हमारे कदम सेफ्टी उधर बढ़ेंगे जिधर सेफ्टी होगी, जहां हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि ये पक्का है अंत मते सोगति का। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि वहां पर हमारा बिल्कुल ऐसा हो कर्मातीत अवस्था में, तो इसका आभास हमें होना चाहिए कि हाँ अब ये हमारा अंत समय इच्छा, हमें ये आभास होगा ऑटोमेटिकली बाबा उधर की तरफ ले जाएगा। और ये तब होगा जब वॉइसलेस कम्युनिकेशन, एक वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वॉइसलेस, बाबा का भी यही हुआ। बस बाबा ने कहा अच्छा बच्चा, बस छुट्टी लेता है, विदा लेता है, बाबा कह के कमरे में गए, और कमरे में बाबा के हाथ में दादी जी का हाथ, और बाबा जैसे पंछी उड़ गया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखने को मिला। कौन सा आश्चर्य? देखो बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, लेकिन 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। जब बड़ी दीदी जी पहुंच गए, उनका इंतजार हो रहा था, हम तो यहां पर थे ही, पहले आ गए थे, लेकिन बाबा के शरीर में ना ने देखा अंतिम में, जब स्नान आदि सब वरिष्ठ भाइयों के साथ हमने मिलकर बाबा को स्नान आदि करा के शांति स्तंभ जो वहीं पर बाबा का अग्नि संस्कार किया गया था, लाया गया, बाबा ने प्रकृति के तत्वों पर ऐसी विजय प्राप्त कर ली थी कि उस समय भी बाबा के शरीर में कोई अकड़न जैसी नहीं, शरीर वैसे ही काफी हद तक फ्लेक्सिबल, और बिल्कुल गोरा जैसा रंग था बाबा का, बिल्कुल बिल्कुल काला नहीं पड़ा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई बाबा को केमिकल लेप नहीं लगाया गया, घी वगैरह थोड़ा सा साथ साथ की शरीर वैसा रहे, लेकिन कोई इंजेक्शन, और डॉक्टरों से, कई डॉक्टरों से हमने पूछा तो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, आत्मा चली जाए और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, दुर्गंध ना आए शरीर के अंदर, शरीर में अकड़न ना हो। ये है पांच तत्वों पर विजय का प्रतीक बाबा का। इतना बाबा ने पांच तत्वों से बने शरीर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी कि अंत समय में ना जब ले गए बिल्कुल वैसे ही चमकता शरीर, और लगता था हमेशा की तरह बाबा उठेगा, बाबा कहेगा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ, और हमेशा की तरह ही हम सब जैसे बाबा की बाहों में चले जाएंगे। क्योंकि ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, और ये पुरुषार्थ बाबा की बुद्धि में हमेशा रहता था, जैसे बताया सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा से कंपेयर करते करते बाबा उस स्थिति तक अल्टीमेटली पहुंच गया। हम सबके भी जैसे सूक्ष्म शरीर, जैसे सूक्ष्म वतन में है, हमें खुद अपने से, इसीलिए बाबा ने शुरू में दादियों को क्या करा, भाई फोटो खिंचवाए कि अपना ताज वाला फोटो भी वो रखो, और वर्तमान सिंपल संगम युगी, और उससे कंपेयर करते रहो, क्योंकि सूक्ष्म वतन वका तो दिखता था। खैर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैंने टॉपिक से डेविएट इसलिए किया गया, कहा कि मैंने कहा क्लासेस तो बहुत होंगी, लेकिन जो मेरी आंखों देखी घटना है उन सब का एक्सचेंज करेंगे तो ये शायद हम सबके जीवन में प्रैक्टिकल रीति से बहुत बहुत काम में आएगी। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई भी परीक्षा हो, कोई बात हो, तुरंत हम ये कंपेयर करें, अगर इस स्थिति में बाबा होता तो क्या ये करता, वो क्या करता बाबा, तुरंत आप थोड़े समय के लिए एकांत में जाएंगे, टच होगा, और फिर जो भी कार्य होगा वो परफेक्ट 100% सफलता लाने वाला होगा। तो ये बाबा के कदम में कदम रखते हुए ये कर, और अंत में जो बाबा का ये देखा कि बाबा ने जब गए बाबा, तो जो भी कार्य था पहले से लेकर जब 61 से बाबा समेटते गए हर चीज को, शुरू से पहले सबका वो था, लेकिन धीरे समेटते 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 बाबा एकदम ऐसे हो गए, रियली समेटा हुआ, जिससे जब आज भी बाबा बुलाए हम जाए तो हम ये अपने को चेक करें रोज। अचानक और एवर रेडी की भाषण तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन ये चेक करें आज अभी इस समय बाबा अगर हमें बुलाए तो कौन सी बात मेरी अधूरी पड़ी हुई है जिसकी तरफ मेरी बुद्धि जा सकती है, कोई भी कार्य वो उसको ऐसा न हो जो हमारे अंत समय कार्य खींचे, व्यक्ति खींचे, वस्तु खींचे, कोई साधन खींचे, अगर उसने खींच लिया तो वो अंत समय में हमारी संपूर्णता में बाधक बन सकता है। तो बाबा को देखा सब चीज ऐसे ही, हमारे ऊपर भी जवाबदारियां तो हैं, लेकिन वो जवाबदारियों को हम ऐसा करते चले कि वो हमारे मार्ग में बाधक न बने, और जैसे ही बुलावा आए हमारे पीछे भी कोई काम न रुके और हम एकदम उड़ करके बाबा के पास चले जाए। एक बात मैं सॉरी करना चाहेंगे क्योंकि टॉपिक से डेविएट किया ये, और लेकिन ये समझ करके ही किया कि ये शायद आपके उस समय के अनुसार हमें भी लेट हो गया, क्योंकि कल से हमारी वहाँ उधर कॉन्फ्रेंस है साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की, और हम नीचे थे नीचे शिविर का, तो वहाँ से आना ही हमारा लगभग 5:30 से 5 मिनट पहले ही हुआ, इसीलिए थोड़ा 5-10 मिनट लेट हुआ, उसके भी माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन ये हमारी बहुत बहुत शुभ भावना है, बाबा के घर में आए हैं तो ऐसे संपूर्ण होके जाएं कि आपके अंदर सबको बाबा का स्वरूप दिखाई दे और हर एक को ये लगे ये हमारे बाबा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी ने हमें सर्व स्नेही प्रभु स्नेही बनने की, पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आंखों देखे आत्मा में छपे हुए अनुभव वितरित किए, प्रसारित किए, जिन्हें सुनते सुनते हम सब अपनी आत्मा का स्नेही बनने का संकल्प और खोज कर रहे थे कि हम कहां कहां अपनी आत्मा से स्नेह नहीं रखते, जो बाबा के सच्चे स्नेह को नहीं ले पाते और अपने लक्ष्य को हम कहीं दूरी बनाए हुए हैं। तो हम भ्राता जी का इतना सुंदर स्पष्ट करके जो आपने अनुभव और शिक्षाएं क्लास हमें दिया, हम सर्व स्नेही बनेंगे, प्रभु स्नेही बनेंगे, तभी हम यज्ञ स्नेही बन पाएंगे और तभी हम सर्व के स्नेही सहयोगी बन सकेंगे। इतनी सुंदर अनुभव युक्त क्लास आपने हमें दिया, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, एक हाथ के स्वागत अभिनंदन और आभार की ताली के द्वारा।